ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੇ ਮੇਰੀ ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੋਲੇ ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉਂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੇ ਉਪਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹਮ ਲੋਗੋਂ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਸੇ ਉਬਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮੇ ਸੁਖਮਨੀ ਰੂਪੀ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਏ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਮਨੀ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੀਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਵਹ ਮ੍ਰਿਤਯੁ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮ ਪਦ ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਪਰਮ ਪਦ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾ ਧਾਮ, ਉਸਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਕੇ ਲੀਏ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਹੀ ਹਮਾਰੇ ਜੀਵਨ ਕਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾ ਹਿਰਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਸੇ ਸੁਣਤਾ ਹੈ, ਸੁਣਕਰ ਮਨਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨਨ ਕਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਸੀ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਤਾ ਹੈ, ਵਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਦੈਵ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹਿਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਉਸਕੇ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਸੇ ਛਾਇਆ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਮੂੰਹ ਸੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਬੋਲੋ ਜਿਸਕੇ ਬੋਲਣੇ ਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਰੇ ਹਿਰਦੇ ਮੇਂ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਿਆ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਬੋਲਣੇ ਸੇ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋ, ਬੁੱਧੀ ਖਰਾਬ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਮੇਂ ਦੁੱਖ ਕਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੋਲੋ ਜਸ ਜਿਹਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨਕੀਨੀ ਦਾਤ, ਕਰਹ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕੈ ਚਾਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉਂ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੋਲੋ ਜਸ ਜਿਹਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ, ਯੂੰ ਤੋ ਰਾਤ ਸੋਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਜਾਗਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੀਤਾ ਮੇਂ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਜਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਕੋ ਜਾਗਤਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਕੋ ਸੋਤਾ ਹੈ। ਯਾ ਨਿਸ਼ਾ ਸਰਵ ਭੂਤਾਨਾਮ ਤਸਿਆਮ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਸੰਜਮੀ। ਜੋ ਸੰਯਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਧਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਛਨਭੰਗੁਰ ਸਰੀਰ ਸੇ ਆਤਮਾ ਕੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਕਰ ਲੇ, ਵਹ ਰਾਤਰੀ ਕੇ ਸਮੇਂ ਉੱਠ ਕਰ ਏਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਜਸ ਜਿਹਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਨਾਮ ਕੋ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ, ਜਦੀ ਯਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠ ਸਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬੋਲਤੇ ਰਹੇ ਤੋ ਸੰਸਾਰ ਕਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੈਸੇ ਚਲੇਗਾ। ਯਹਾਂ ਪਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇ ਨਾਮ ਕੋ ਬੋਲਣੇ ਕਾ ਭਾਵ ਯੇ ਹੈ, ਹਾਥ ਪਾਉਂ ਸੇ ਕਾਮ ਕਰ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਇੱਕ ਮਾਂ एक महीने के बच्चे को पालने में रख देती है, घर का काम करती है, भोजन बनाती है, भांडे मांजती है, घर का सब कुछ करती है, लेकिन ज्यों ही बच्चा रोता है माँ सब कुछ छोड़ करके दौड़ करके बालक को अपने छाती से चिपका लेती है। माँ का चित्त जो है उस बालक में समाया रहता है। जिस प्रकार से लड़के पतंग उड़ाते हैं, चार पांच बच्चे पतंग उड़ाते हैं, आपस में बातें भी करते हैं, लेकिन उसका जो चित्त है वो डोर के ऊपर होता है कि कोई और पेचा ना लगा दे। आप पहाड़ों में जाएं तो स्त्रियां पानी लेने के लिए गागर में बहुत दूर दूर एक एक किलोमीटर जाती हैं, क्योंकि ये दास रहा है पहाड़ों में काफ़ी समय। वहाँ पर स्त्रियाँ चार छः इकट्ठा होकर के जाती हैं झरने से पानी लेने के लिए, यहाँ तक कि सिर पर दो दो घड़े रख लेती हैं, आपस में बातें करती हैं, हंसी करती हैं, इठलाती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन उसका चित्त जो है गागर में होता है कि गागर ना गिर जाए। आप कभी कभी देखे होंगे जो गांव के लोग हैं कि गौ का जो बछड़ा है छोटा, अभी जो सिर्फ महीना 15 दिन का बछड़ा है, वो गौ के साथ चरने के लिए चली जाती है। कभी कभी गौ काफ़ी दूर निकल जाती है, बछड़ा पीछे रह जाता है, लेकिन बछड़ा को जब कोई संकट महसूस होता है या माँ का अभाव महसूस करती है बछड़ी, वो ज्यों ही बोलती है माँ दौड़ी हुई आती है, गौ दौड़ी हुई आकर के बछड़े को चारों तरफ घूमती है। जिस प्रकार से गौ अपने बछड़े का ख्याल रखती है, जिस तरह माँ एक बच्चे का ख्याल रखती है, जिस प्रकार से पतंग उड़ाने वाले बालक अपने डोर के ऊपर ध्यान रखता कि कोई और पेचा न लगा दे, जिस तरह से पहाड़ों की स्त्रियाँ अपने गागर पर ख्याल रखती है कि मेरा गागर न गिर जाए, साध संग जी भक्त जन जो वाहिगुरु का सिख है वो भी चलते फिरते सोते बैठते जागते काम तो करता है, लोगों से बातें भी करता है व्यवहार की, लेकिन जो उसका चित्त है वो वाहिगुरु के चरणों में, साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों में समाया रहता है। बोलह जस जिह्वा दिन रात, रात दिन जो है इस जिह्वा से वाहिगुरु का ही नाम का सुमरण करना है, बोलना है। यह जिह्वा तभी तक पवित्र है जब तक हम प्रभु का नाम लेते हैं, कान तब तक पवित्र है जब हम वाहिगुरु के जस को सुनते हैं, हाथ पवित्र तब है जब इस हाथ से दान देते हैं या सेवा करते हैं, और शरीर तभी सफल है कि मृत्यु से पहले पहले इस शरीर के द्वारा परमपिता परमात्मा जो हमारे जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त कर ली जाए। जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया गुरबिन घोर अंधार, गुरबिन घोर अंधार गुरबिन समझ ना आवे, गुरबिन सुरत ना सिद्ध गुरुबिन मुकत ना पावे। हम लोगों को गुरु वाला होना बहुत जरूरी है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज आज उपदेश कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को एक तो अमृत छकना जरूरी है, और अमृत छक करके गुरु वाला हो जाना है, फिर गुरु के हुक्म को जो शब्द गुरु हैं, शब्द गुरु को हम लोग पहले उसको कीर्तन सुने, कथा सुने, क्योंकि सबसे उत्तम हर की कथा, कथा को कीर्तन को सुन करके मनन करें, मनन करके अपने जीवन में घटाएं। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं बोलह जस जिह्वा दिन रात। एक तो है कि हम संसार के लोगों का जस गाते हैं, किस लिए कि कुछ धन मिल जाएगा, किस लिए जस गाते हैं कि कुछ मान मिल जाएगा। जो व्यक्ति संसार के चीज़ों के लिए संसार के लोगों का जस करता है उसको संसार की चीज़ें मिल तो जाती हैं, आनंद नहीं मिलता, वाहेगुरु की कृपा नहीं मिलती, वाहेगुरु का चरण नहीं मिलता, वाहेगुरु का चरण कृपा उसी को मिलता है जो वाहेगुरु के जस को गाता है। बोलह जस जिहवा दिन रात, प्रभु अपने जन कीनी दात। जो प्रभु सबका अपना है, प्रभु को अपना क्यों बताया गया है कि शरीर दूर है, इंद्रियां दूर है, मन दूर है, बुद्धि दूर है। जो मन बुद्धि से भी जो नज़दीक है, जो मन को संकल्प विकल्प करने की शक्ति देता है, जो आँखों को देखने की शक्ति देता है, कान को सुनने की शक्ति देता है, मुंह को बोलने की शक्ति देता है, वो आखिर कौन है? वह अपना प्रभु ही तो है, जो कि सभय घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले। कौन है जो बोल सकता है? उसकी शक्ति के बगैर कोई ही बोल नहीं सकता। जो श्वास बाहर गई है वो अंदर ना आवे तो कोई बोल के दिखा दे। गुरु महाराज कहते हैं कि जो भी श्वास है यह प्रभु के हुक्म से ही है। वह जो श्वास जो अंदर बाहर आ रहा है यह भी प्रभु की शक्ति से है। क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या कोई करे अभिमाना, जब अपनी जोत खींचा है तू स्वामी तो कोई करो दिखाओ खियाना। यदि जोत इस शरीर से प्रभु एक सेकंड के लिए खींच लेते हैं, फिर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं कथाकार हूँ, कीर्तनिया हूँ, बुला रहा हूँ, क्या हूं? सब समाप्त हो जाता है। इसका भाव ये है कि जो अपना प्रभु है उसकी शक्ति से ही सब कुछ हो रहा है, अपना कुछ भी नहीं। जो भी दात है, प्रभु अपने जन कीनी दात, ये प्रभु ने सब को जो है सो दात दिया है। करह भगत आत्म कह चाहे, प्रभु अपने सियो रह समाए। जो व्यक्ति इस चाव से भक्ति करता है कि हमें आत्मा का आनंद मिल जाए, हमें आत्मा की अनुभूति मिल जाए, क्योंकि आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। आत्मा ही परमात्मा है, जैसे एक बूंद ही सागर है। बूंद और सागर में इतना ही फर्क है कि क्वांटिटी का फर्क है, क्वालिटी का कोई फर्क नहीं। बूंद को हम सागर में डाल दें तो सागर हो जाता है, फिर बूंद को बाहर नहीं कर सकते। इसी तरह से जीव भक्ति करते 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 जब वाहेगुरु में लीन हो जाता है तो फिर कोई चाहे कि उसको बाहर कर लें तो हो नहीं सकता। मिलिया होए ना बिछड़े, जे मिलिया होए, एक बार यदि तुम उसके अपने को समर्पित कर दो वाहेगुरु के चरणों में, वाहेगुरु अपने साथ मिला लेंगे। करह भगत आत्म कह चाहे, आत्म कह चाहे का भाव ये है अपनी आत्मा के आनंद के लिए, अपनी अनुभूति के लिए आदमी भक्ति करे। प्रभु अपने से रह समाए, जो अपना प्रभु है उसके साथ समा जाए। जिस प्रकार से नदियाँ उछल कूद करती हुई धीरे धीरे सागर में समा जाती हैं, ऐसे ही भक्त भगवान को भजन करते करते वो भक्त जो है भगवान हो जाता है। प्रभु अपने स्यों रहे समाए, ज्यों जल मह जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। जल तरंग अरफेन बुदबुदा, जलते भिन्न न होई, यह परपंच पार ब्रह्म की लीला, विचरत आन न होई। विचार करो तो ये सब कुछ जो है सो प्रभु की लीला ही है। कहत नामदेव हर की रचना, देखो हृदय विचारी, घट घट अंतर सर्व निरंतर, केवल एक मुरारी। एक वाहिगुरु का ही सारा खेल है, क्योंकि एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखो तत सोई, माया चित्र बचित्र विमोहित, बिरला बुझे कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। ऐसा जानने वाला व्यक्ति सदैव आनंदित रहता है। गुरु महाराज कहते हैं प्रभु अपने स्यों रहे समाए, जो अपना प्रभु है उसके साथ समा जाए। हमारे चित्त के अंदर दो प्रकार की वृत्ति है, एक विषयाकार वृत्ति है, एक ब्रह्माकार वृत्ति है। जिसका मन संसार के विषयों में लगा हुआ है कि और प्राप्त कर लें, और प्राप्त कर लें, और प्राप्त कर लें, मनुष्य की सबसे बड़ा जो है कमजोरी क्या है, भुलेखा क्या है कि वो एक आशा बनाए रखा है मन में कि एक समय आएगा, इतने बैंक में बैलेंस हो जाएंगे, लड़के लड़कियां सेट हो जाएंगे, इतना पेंशन लगने लग जाएगा, उसके बाद निश्चिंत होकर भजन करेंगे। वो दिन कभी किसी का आता नहीं। जब समय मिल जाए तभी जो है सो भजन कर लो। समय मिलने पर भजन नहीं करना चाहिए, समय को निकाल के भजन करना चाहिए। समय तो मिलना ही नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं स्वामी समय नहीं मिलता, समय तो सारी जिंदगी नहीं मिलना है, समय को निकाल के गुरुद्वारे जाना है। और ये जो नानक सर गुरुद्वारा है, ये तो भक्ति का घर है, भक्ति का केंद्र है, निरोल। यहाँ के जितने संत जन हैं, आदरणीय विहंगम जन, 2 बजे रात से उठ करके प्रभु की आराधना करते हैं, सुमरन करते हैं। यहाँ कोई किसी तरह की और कोई बात नहीं, मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ, सुनी सुनाई नहीं। यहाँ पर जितना आनंद, जितनी प्रसन्नता, जितना मुझे, और यहाँ के संगत भी इतने अच्छे हैं कि संगत हर प्रभु पे बसे जियो, नित्य प्रति आते हैं और गुरु महाराज की खुशियाँ लेते हैं। जो होवा होवत सो जाने, प्रभु अपने का हुक्म पछाने। जो होवा होवत सो जाने, जो हो रहा है टोटल एक्सेप्टेंस, कोई किंतु नहीं। प्रभु से तो कभी गिला ही नहीं करना कि प्रभु ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। मैं कब लोग आते हैं उसके मन में शिकायत ही शिकायत होता है सब कुछ होने पर भी। एक बार महाराजा रणजीत सिंह जी का एक आंख उनका खराब था, उन्होंने अनाउंस किए कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ये एक आंख अपना दे दे और मेरा आंख जो है दूसरे आंख जैसा ओरिजिनल हो जाए, उसको मुंह मांगा इनाम देंगे। कोई नहीं आया। फिर उन्होंने कहते हैं कि मैं आधा राज्य भी दे देंगे यदि कोई एक अपना आंख दे दे। आप विचार करो, जिस आंख का तुम कीमत नहीं समझते, जिस पांव का कीमत नहीं समझते, जिस दांतों का कीमत नहीं समझते। एक दांत डॉक्टर लगाता है ना 5,000 लेता है इंडिया में, थोड़ा सा हिल जाए उसको ठीक ठाक करने, सोचो गुरु महाराज ने क्या लिया आपसे, और ओरिजिनल दांत दिए। एक एक चीज जो प्रभु ने दिया है वो अनमोल रत्न है, अनमोल है। फिर भी यदि रोए आदमी, क्या दिया है प्रभु ने, हमें गिला नहीं करना है, जैसे रख रहा है प्रभु पूर्ण स्वीकार है, प्रभु की आज्ञा मानो मात्र। गुरु महाराज कह रहे हैं जो होवा होवत सो जाने, जो व्यक्ति जो हो रहा है, जो हो गया है, जो होने वाला है, पूर्ण रूप से स्वीकार करता है, कृत करता है, नाम जपता है, वन छकता है और प्रभु के हुक्म में जो रहता है, समझो सबसे बड़ा साधक है। क्योंकि हुक्म मनिए होए परवान तक खसमे का महल भैसे, वही व्यक्ति प्रभु के खुशियां को प्राप्त करता है जो उसके भाने विचरंदा है। जो होवा होवत सो जाने, प्रभु अपने का हुक्म पछाने। जो प्रभु के, जो अपना प्रभु, यहाँ पर बार बार अपना बताया है क्योंकि सबके अंदर वो प्रभु है, वाहेगुरु है। प्रभु अपने का हुक्म पछाने, जो उसके हुक्म को पहचानता है। एक समय की बात है, साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज उपदेश करते हुए जा रहे थे तो वहाँ पर किसी सिख ने प्रश्न किया कि महाराज आप ये बताएं सिख कौन है, सिख किसको कहते हैं, और गृहस्थी किसको कहते हैं, और फकीर किसको कहते हैं। तो वहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं ऐसा करो कि सामने एक गांव है वहाँ चले जाओ, इस नाम का एक व्यक्ति है उसके घर में जाना और जा करके ये कहना कि गुरु महाराज बोले हैं कि मैं भोजन तब छकूंगा जब 200 रुपया दे। उन्होंने 200 रुपया सेवा के लिए मांगे। कहते हैं ठीक है महाराज, मैं चला जाता हूँ। उसने नमस्कार किया और जा करके पूछते पूछते उस सिख के घर में गया। उसको जब पता चला कि गुरु महाराज का ये सिख है, उसने बहुत सेवा किया, उसका पांव धोया, पानी पिलाया, चाय पानी जो। कहते हैं जी भोजन तो मैं तब करूंगा जब 200 रुपया दे, मैं ऐसे भोजन नहीं करूंगा। वो आदमी जो था बहुत चिंता में पड़ गया, दूसरे कमरे में जाके सोच रहा है क्या किया जाए, 200 रुपया तो मेरा घर में है ही नहीं, मैं भांडे भी बेच दें तो भी 200 रुपया नहीं मिलेगा। उसकी पत्नी कहती है आप चिंतित क्यों हैं? कहते हैं चिंता इसलिए है कि गुरु महाराज ने 200 रुपया जो है हुक्म किए हैं और वो है नहीं, ये सिख को 200 रुपया देंगे तब ये भोजन करेगा, क्या किया जाए। वहाँ पर उसकी पत्नी कहती है कि जो गांव का साहूकार है उसने अपनी लड़की का रिश्ता मांगा था, तो हमने जो है रिश्ता दिया नहीं था, और वो साहूकार है उसने कहा था कि मैं तुमको 500 रुपया भी दूंगा तुम अपनी लड़की का रिश्ता मेरे साथ करो। ये तो बड़े अच्छी बात है, क्यों ना हो, ये रिश्ता जो है रिश्ता भी हो जाएगा, मेरा धर्म भी रह जाएगा। वहाँ पर जी कहते जाओ जल्दी उस साहूकार के पास। वो सिख गया साहूकार के पास और कहता है कि हमारी लड़की का रिश्ता तुम्हारे साथ कर देता हूँ, हमें ज़रूरत है इस वक्त पैसे का, मुझे 250 रुपया दे। वो कहता है 500 ले जाओ, 700 ले जाओ। कहते नहीं मुझे 250 ही चाहिए। उसने 250 रुपया लाया, 200 रुपया उस सिख को देता है कि गुरु महाराज को दे देना, 50 रुपया मैं तुमको देता हूँ कि तुमने हमारे घर में चरण पाया है। ये मर्यादा हमारी पुरातन है कि कब जब कोई साधु संत महापुरुष हमारे घर में आते हैं तो भोजन खिलाते हैं फिर दक्षिणा देते हैं। दक्षिणा का महात्म क्या है कि हमने बुलाया, आप कह देते हम नहीं जाना है जी, ये भी बोल सकते थे, लेकिन आपने आके भोजन किया, ये हमारे ऊपर एक अनुग्रह किया, ये दया किया, हमारी मन भावना को पूरा किया, उसके लिए ये बख्शिश है, ये दक्षिणा है। दक्षिणा का बहुत बड़ा महत्व, भावे एक सूखा फूल ही दे, ये नहीं कि जो है सो $85 देना है, एक सूखा फूल तोड़ करके दे, प्रसन्नता से दे, अहंकार से रहित नहीं। बहुत से लोग देते हुए तो अहंकार भरा रहता है, उसका कोई फायदा नहीं। वो जी सिख लेकर के वहाँ से चल पड़ा 200 रुपया, जाते जाते जो है सो थक गया था, वहाँ पर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। वहाँ पर एक फकीर भी था बैठा, वो देखता क्या है, एक फकीर के पास कुछ लोग आए मथा टेके और कीमती दोसाला दे गया, अच्छे अच्छे पदार्थ दे गए और मथा टेक के चले गए। थोड़े बहुत देर के बाद वो सिख क्या देखता है, कुछ लोग आए और वो दोसाला ले गए, उसके भोजन को ले गए और जाके खाते खाते चले जा रहे। वो साधु जो है जो दोसाला दे गया, तरह तरह के पदार्थ दे गया, उसको देख करके बहुत उछल कूद नहीं करने लग पड़ा, बहुत खुश नहीं हुआ, और जो उसके पदार्थ को ले गया, दोसाले को ले गया, उसके लिए वो दुखी नहीं हुआ। इस तरह से वो देख करके बहुत हैरान हुआ वो सिख, वहां से उठ करके जाने लगा। शाम का वक्त हो गया था, वो शाम के वक्त एक दरख्त के नीचे बैठ करके आराम कर रहा है। उस दरख्त के नीचे दो पंछी हैं, मैना और उसकी वाइफ, दोनों जो हैं आपस में प्रेम से बैठे हैं, गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोनों सोचते हैं कि हमारे दरख्त के नीचे एक अतिथि आया है। अतिथि का मतलब होता है कि तिथि बगैर बताए बगैर आवे, ये नहीं कि फोन कर दे मैं इतने बजे आ रहा हूँ, जो है सारा कुछ तैयार रखना, उसको अतिथि नहीं कहते। उसको गेस्ट कह सकते हैं, गेस्ट समझे, जो तुम्हारे जो तुमको गैस पैदा कर दे आ करके, ये भी दो ये भी दो, वो उसको गेस्ट कहते हैं। हमारी संस्कृति में है अतिथि। अतिथि का भाव ये है कि अचानक आ जाए, अतिथि तिथि बगैर बताए बगैर, ओ जी आ गया, वो महीना आपस में पति पत्नी बात कर रहा है कि हम अतिथि जो होता है वो परमात्मा का स्वरूप होता है, हमारा भाग्य अच्छा है कि हमारे घर आए हैं दरख्त के नीचे, इसके लिए क्या भोजन दिया जाए। तोता कहता है चिंता ना करो, मैं कहीं से अग्नि ले आता हूँ और कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा कर देता हूँ, क्योंकि सर्दी का मौसम था दिसंबर का, बहुत ठंड भी मान रहा था वो सिख। वो जी मैना ने अग्नि ले आया कहीं से, और उसकी जो पत्नी थी कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके वहाँ रख दिया और अग्नि उसमें डाल दिया, अग्नि जलने लग पड़ा, अग्नि जलने लग पड़ा, वो सिख जो है सेंक करने लगा, उसका जो ठंड था वो दूर हो गया। इतने में तोता मैना आपस में सलाह करते हैं कि हम दोनों गिर जाते हैं इसमें, गिर जाएंगे तो भून जाएंगे, भून कर जाएगा तो ये खा लेंगे, इसका भूख मिट जाएगा। जब गृह करह ता धर्म कर, नहीं तो कर वैराग, वैरागी बंधन करे ताको बड़वा भाव। ऐसा गृहस्थी गंगा के नीर के समान है। वो जी दोनों जो है सो पति पत्नी जो है मैना नीचे गिर गया, वो अचानक देखता है अतिथि कि ये दोनों यहाँ पर भून गए, वो दोनों को जो है सो खा करके सिख जो है गुरु महाराज के पास आ गए। कहते महाराज ये 200 रुपया ले और आप मुझको बताएं सिख कौन है, फकीर कौन है, गृहस्थ कौन है। कहते उत्तर तो दे दिया है तुमको। कहते मुझे तो कुछ पता नहीं चला। कहते सिख बनना है तो ऐसा बनो जो गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए सब कुछ न्यौछावर बेचन, सब गुरु का चीज समझे, तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मनिए पाइए, सब अमानत समझे गुरु का। वो सिख जिसके पास गया था तुम उसके पास कुछ भी नहीं था, सारा भांडा भी मैं देता 200 रुपया नहीं था उसके पास, उसने कुछ परवाह नहीं किया और तुमको कहां कहां से किसी तरह 200 रुपया ला के दिया, उसने हुक्म को मान। सिख वो है, यदि सिख बनना है तो गुरु के हुक्म पर चलने वाला सिख बनो, उसके जैसा बनो। और फकीर बनना है तो वो भी तू देख के आया है, आए हरख न गए सो, जब राज देहता कवन बढ़ाई, जो भीख मंगावे तो क्या घट जाए। कोई आ रहा है दुसाला दे रहा है, तरह तरह के पदार्थ चढ़ा रहे हैं, डॉलर चढ़ा रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं वो डॉलर चुक के ले जा रहा है, दुसाला ले जा रहा है, पदार्थ ले जा रहा है, वो जो चढ़ा रहा है उसको वो माला नहीं पहना रहा है, जो ले जा रहा है उसको डंडे नहीं मार रहा है, दोनों अवस्थाओं में सम जो रहता है वो फकीर है। और गृहस्थ, गृहस्थ वो है जिसके घर में कोई अतिथि आ जाए उसको नारायण का रूप समझे। ऐसा कहते हैं ना कि जो भी घर में आवे उसका स्वागत करना चाहिए, पता नहीं किस भेष में नारायण आ जाए। मैं कहता हूँ जिस भेष में कोई आएगा वो नारायण ही होगा, क्योंकि सबै घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे, जो भी आएगा तुम्हारे दरवाजे पर वो नारायण ही होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता, दूसरा है कौन। गुरु महाराज कहते हैं यदि तुमको गृहस्थ बनना है तो ऐसा मैना जैसा बनो, पति पत्नी दोनों जो है गृहस्थ में रह करके धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करें, आए गए अतिथि की सेवा करें और नाम सुमरण करें और हमेशा जो है सो प्रभु के हुक्म पर चलें, सेवा सिमरन अतिथि सेवा। गृहस्थ बनना है तो ऐसा, ऐसा गृहस्थ उत्तम होता है। जो होवा होवत सो जाने, प्रभु अपने का हुक्म बचाने, हमेशा प्रभु के हुक्म पर चले। हे वाहेगुरु, जितना दिया था पहले बहुत दिया था, हमारी औकात से ज़्यादा दिया, अब जो दे रहे हो हमारी इतनी क्षमता नहीं है लेकिन उससे ज़्यादा दे रहे हो, और आगे भी आप ही दो, और है कौन। मैं किसी का तो नहीं जानता लेकिन इस गद्दी पर बैठ के मैं अवश्य कहता हूँ कि प्रभु ने जितना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा दिया है। आप लोगों का प्यार, आप लोग इतने प्रेम से जो है कथा सुनते हैं, घर ले जाते हैं और हमें इतना स्नेह दे रहे हैं। हमें ये नहीं लगता कि आपको मैं 2.5 महीने से जानता हूँ, लगता है जन्म जन्मांतरों से जानता हूँ। और ये सब चीज़ों की कृपा जो है ये आदरणीय ब्रह्मज्ञानी बाबा गुरुदेव जी की है, उनकी कृपा से जो है उन्होंने जोड़कर हम आपका दर्शन कराए हैं। हम सब कुछ सौंप करके भी उनकी देन दे नहीं सकते, ये उनकी अपार कृपा है। बाबा जी तो जोड़ते हैं सबको, जोड़ते हैं, जोड़ने वाला महान होता है, तोड़ने वाला महान थोड़े होता है। जो होवा होवत सो जाने, प्रभु अपने का हुक्म पछाने, तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कह एक न जानो। तिसकी महिमा कौन बखानो, कहते हैं कि उसकी महिमा को हजार हजार मुख मिल जाए तो भी उसकी बखान नहीं किया जा सकता। शेष नाग प्रार्थना किया प्रभु को, प्रभु प्रसन्न हुए, कहते हैं क्या मांगना है मांगना, कहते हैं महाराज हमको हजार मुख दे दो, किस लिए, हजार मुख से तुम्हारा नाम ले सकूं। ऐसा ऐसे ऐसे भगत हुए हैं। तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कह एक ना जानो। उसके जो गुण है, एक एक गुण, एक एक चीज जो हमें प्रभु ने दिया है उसके बारे में बखान किया नहीं जा सकता है, अपार है। आठ पहर प्रभु बसह हजूरे, कह नानक से ही जन पूरे। जो व्यक्ति ये जानता है कि परमात्मा हमेशा हाजर नजर है, व्यक्ति या तो पास्ट में जीता है या फ्यूचर में जीता है। पास्ट में जीने का भाव ये है कि जो आज तक किया है हमें ऐसा करना चाहिए था, ऐसा जीना चाहिए था, ऐसे उधेड़ बूंद में रहता है, जो बीत गया है कचरा उसका चिंतन करते रहता है। ऐसा व्यापार करते तो इतना प्रॉफिट होता, मैंने ऐसा करने चाहिए था, आपस में जब बाप बेटा या परिवार मिलते हैं ऐसा करते तो आज ज़्यादा धन हो जाता, पिछली बातों को जो है ऐसे ही दोहराते रहते हैं। और या तो पास्ट में होता है आदमी या फ्यूचर में होता है, कल ऐसा होगा तो हम ऐसा सुखी हो जाएंगे। जो व्यक्ति पास्ट और फ्यूचर में रहता है वो संसार में रहता है, जो वर्तमान में रहता है वो प्रभु के चरणों में रहता है। वर्तमान का भाव है आत्मा में वास करना। हम आज क्यों नहीं आनंदित हो सकते हैं, आज आनंदित, कल ज्यादा होगा, कल ज्यादा हो जाएंगे आनंदित। फॉर दिस मोमेंट नाउ, इस वक्त हम आनंदित, कल ज्यादा होगा ज्यादा। गुरु महाराज कहते हैं आठ पहर प्रभु बसे हजूरे, जो व्यक्ति ऐसा जानता है कि परमात्मा आठों पहर सदैव, सब कुछ का अभाव हो जाता है, परमात्मा का कभी अभाव नहीं होता, हमेशा ऑलवेज भाव होता, ऑलवेज प्रेजेंट, कहो नानक से ही जन पूरे, वह व्यक्ति पूरा है, अर्थात उसने पूरा जो परमात्मा है उसको जान लिया है, अनुभव कर लिया है, जो 24 घंटा परमात्मा को हाजर नाजर मानता है। सत्संग जी साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जो महिमा है, उन्होंने देखो पैदल चल करके कहाँ कहाँ प्रचार किए, कहाँ मक्का मदीना, कहाँ साउथ, कहाँ बिहार, हर एक जगह पैदल चल करके, पैदल चल करके लोगों को उतारे। और उनकी लीला तो अपार ही है, क्योंकि वो नारायण थे ना, उन्होंने हम लोगों को इतना कुछ दे गए हैं कि उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। एक समय की बात है कि एक फकीर था। वो फकीर अपनी मस्ती में मस्त रहता था हमेशा। वो कोई नमाज पढ़ रहा था तो उसने नमाज नहीं पढ़ा। मुसलमानों ने शिकायत किया राजा के पास कि ये कैसा फकीर है, ये नमाज नहीं पढ़ता है। फिर जाकर के वो राजा जो समझदार था कहते हैं कोई बात नहीं, उस फकीर से जाके पूछ आएंगे। और जो कट्टर लोग होते हैं ना मुल्ला मौलवी, वो हमेशा जो है फकीरों को, जो बंदगी वाले होते हैं उसका दुश्मन होते हैं। वो राजा कहता है कोई बात नहीं, समय पा करके उससे पूछ लेंगे। कुछ दिन के बाद एक मुर्दा जा रहा था, मुर्दा जा रहा था तो फकीर जो है उस मुर्दे को दे करके लेट गया। फिर जाकर के मुल्ला मौलवी ने जाके शिकायत लगाया, ये कैसा काफर है कि मुर्दा को दफनाने के लिए जा रहे थे वो दे करके लेट गया जी। राजा कहता है कोई बात नहीं, पूछाएंगे उससे पूछाएंगे। फिर जाकर के एक मुसलमान ने उसको रोटी देने लगा तो खाया नहीं। एक हिंदू आ गया देने के लिए रोटी, उसको लेके खाने लग पड़ा। कहता ये मुसलमान हो के मुसलमान का दुश्मन। फिर मुल्ला ने जाके शिकायत की, कहता है कोई बात नहीं पूछेंगे जाके फकीर से। चौथी बार क्या हुआ कि वो फकीर एक दुकान में गया और कहता है खुदा का चीची में से ये अंगूठी निकाल दे। खुदा की चीची है, खुदा की चीची में से ये अंगूठी निकाल दे। फिर जाके मुल्ला ने शिकायत किया, देखो ये अपने को खुदा बोलता है कि खुदा की चीची में से अंगूठी निकाल दे। अब जब कहते हैं ना कि चुकड़ा पत्थर को ही पाड़ देता है, पंजाबी में कहावत है ना, बार बार कही जावे ना, शिकायत करी जावे तो फिर आदमी को विश्वास हो जाता कोई ना कोई बात तो है ही है। आप समाज में देखना कि एक ही बार को शिकायत करी जावे करी जावे करी जावे। मंथरा बार बार शिकायत करती है और राजा दशरथ की जो पत्नी थी वो बहुत पवित्र थी, कई कई सबसे ज्यादा राम को मानती थी, प्यार करती थी, लेकिन मंथरा रोज शिकायत कर करके उसका इतना मन गंदा कर दिया कि जा करके देखो जो उसने दशरथ को जान बचाई बाद में वही कई कई दशरथ का जान दी उसने। इसलिए निंदा जो है ना कभी सुनना नहीं चाहिए। जो निंदा सुनावे वो समझो तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान करेगा। लगता तो मीठा है सुनने में, बड़ा रसदार लगता है, लेकिन वो रसदार जो है वो बहुत घातक जहर है। फकीर के पास राजा गया, कहता भी तुम्हारी बहुत कंप्लेन आ रहा है, क्या बात है? साईं जी हम आपको आदर देते हैं, महान पुरुष हो, क्या कारण है कि आप नमाज नहीं पढ़ने जाते? तो फकीर ने बोला कि बादशाह ये बताओ कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? कहते हैं दो बच्चे हैं। एक बच्चा कहाँ रहता है? कहता है वो तो बहुत दूर रहता है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर रहता है। एक लड़का मेरे पास रहता है। कहता है जो लड़का दूर है 100 किलोमीटर दूर, उसको कितने बार याद करते हैं? कहते हैं 4-5 बार कभी कभी याद कर लेते हैं जब याद आता है तो। कहते हैं जो पास है उसको कितने बार याद करते हैं? कहते हैं वो तो जी हमेशा याद ही रहता है, पास जो हुआ हमेशा उसकी याद बनी रहती है। वो फकीर कहता है कि जो खुदा वाहिगुरु सदैव अपने पास है उसके बाद उसको मैं 5 बार याद करूं या हमेशा याद करूं, आप बताओ। अपने पुत्र को जो तुम्हारे पास है हमेशा याद करते हो, तो जो अल्लाह ताला हमारे पास हमेशा है उसको मैं 5 बार याद करूं? हे राजन मैं तो 24 घंटा उसको याद ही याद करता हूं, उसी को भजता हूँ। वो बहुत प्रसन्न हुआ राजा, फकीर तू धन्य है धन्य है, ठीक है एक बात तो तुम्हारी शंका निवृत्त हो गया, लेकिन मुझे पता चला है कि मुर्दा जा रहा था और तू जा करके वहां पर लेट गया। वहां पर वो फकीर कहता है कि हमने किसी महात्मा से सुना था, दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजो श्री भगवान। मैं हमेशा याद रखता हूं वाहिगुरु को और मौत को। मैं लज्जित हो गया उस मुर्दे को देख करके, देखो वो बोल नहीं रहा है और ये मैं भी तो, ये भी तो मुर्दा ही है, ये बोल क्यों रहा है। मैंने लज्जित होकर लेट गया कि जैसे वो मरा तू भी तो मरा ही है, बोल क्यों रहा है तू। मैं शर्मिंदा होकर लेट गया कि मुर्दा होकर तू बोल रहा है। पहला मरण कबूल, जीवन की छठ आस, हो सबना की ऋण का तो आओ हमारे पास। कहते हैं तीसरी एक शिकायत और आई है, हिंदू ने रोटी दिया तो तुमने खाने लग पड़ा, मुसलमान ने दिया तुमने खाया नहीं। उस वक्त क्या था कि मुसलमान का हुकूमत चल रहा था, राजा मुसलमान था और प्रजा के ऊपर हिंदुओं को बहुत सताया जा रहा था, बहुत ज़्यादा जबरदस्ती मुसलमान। कहते ये जो हिंदू लोग हैं बहुत दयावान हैं, ये जो रोटी देते हैं प्रेम से देते हैं, इसीलिए मैं इसका खा लेता हूँ, और ये जो मुसलमान है ये बड़े अहंकार से देते हैं, ऐसे फेंक के देते हैं जैसे कुत्ते को देते हैं, इसलिए मैं इसका नहीं खाता। राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव विदर्भ को देखियो, वह गरीब मोह भाव है। जो साईं लोग, फकीर लोग, वाहेगुरु, ये तो प्रेम के भूखे होते हैं, ये 36 पदार्थ नहीं देखते। कहते मैं इसीलिए इसके भोजन को ले लेता हूँ, इसका नहीं लेता। कहते तीन का उत्तर तो दे दिया, मुझे बहुत प्रसन्नता। एक और है कि तू अपने को खुदा समझता है, जाके सुनारे के दुकान में कहता है कि ये खुदा के चीची से अंगूठी निकाल। वहां पर वो फकीर कहता है कि बादशाह ये बताओ ये सारा संसार किसका है। कहते हैं अल्लाह ताला का है। ये जो खजाना तुम्हारा किसका है, अल्लाह ताला का है। तुम किसके हो, अल्लाह ताला के हैं। मैं किसका हूँ, अल्लाह ताला के। ये शरीर किसका है, अल्लाह ताला का है। ये चीची किसकी है, कहते हैं अल्लाह ताला का। तो मैं यही तो बोला जाकर कि खुदा की चीची से जो है सब अंगूठी निकाल, मैंने गलत क्या हुआ। राजा ने इस उत्तर को देख करके हैरान हो गया, उसको ले गया राजमहल में, बहुत इनाम दिया और क्या के जो है। ये फकीरों की जो है ना सो रमज ही कुछ अलग होती है, समझे ना। इन लोगों की जो है सो महानता जो है सो बहुत ज़्यादा। गुरु महाराज, गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, मन मेरे तिनकी ओट ले, हे मन संसार की ओट ना ले। संसार की ओट लेने पर दुख को दुख कलेश मिलेगा, एक वाहिगुरु का ओट ले। मन तन अपना तिन जन देह, कहते हैं सब कुछ तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मनिए पाइए। सब कुछ वाहिगुरु के आगे अर्पण कर दो। जिन जन अपना प्रभु पछाता, जिसने अपने प्रभु को जाना है, जो अंदर है सदैव है, सो जन सर्व थोक का दाता। वास्तविक में दाता वही बन जाता है जिसने प्रभु को जाना है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वेद में मंत्र है कि जो ब्रह्म को जान लेता है, परमात्मा को जान लेता है, वो परमात्म स्वरूप हो जाता है। तिसकी शरण सर्व सुख पावे है, तिसके दरस सब पाप मिटावे। जिसने प्रभु को पहचान लिया है उसके शरण में जब जाओगे ना तो तुमको सब सुख मिलेगा। अब देखो बाबा जी हैं आदरणीय बाबा जी, उन्होंने प्रभु को पहचान लिए, हम लोग उनके पास बैठते हैं सुख मिलता है, शांति में उठने का मन ही कर। तिसकी शरण सर्व सुख पावे है, तिसके दरस सब पाप मिटावे। साधुनाम दर्शनम पुण्यम, महापुरुषों के दर्शन से भी जो है सो पुण्य होता है, पाप कट जाते हैं। अवर स्यानप सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज आप लोगों को, हम लोगों को, सारे को उपदेश कर रहे हैं, सारा मन का जो चतुराई है, क्योंकि चतुराई ना चतुर्भुज पाई है। जिसने भी आज तक परमात्मा को पाया है वो अति सरल लोग थे, चतुर लोग नहीं। चतुराई ना चतुर्भुज पाइए, भोले भाई मिले रघुराया। वाहिगुरु उसी को मिलता है जो अति भोला है। अवर स्यानप सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग। उस जन की तू सेवा लाग जिसने अपने को प्रभु के चरणों में डाल दिया है। आवन जान न होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजव सद पैरा। आवन जान न होवी तेरा, जब तुम एक वाहिगुरु का हो जाओगे तो तुम्हारा जन्म मरण समाप्त हो जाएगा। मरणंग विसरणंग गोविंद है, जिसने प्रभु को विसार दिया है, भुला दिया है, वो समझो मरा हुआ है। मरणंग विसरणंग गोविंद है, जीवनंग हर नाम ध्यावन है। वही जी रहा है जो हरि का ध्यान करता है, हरि का सुमरण करता है, और उसका जो है आवन जामन जो है जन्मना मरना समाप्त हो जाता है। आवन जान न होवी तेरा, यदि तुम प्रभु का हो जाओगे, वाहिगुरु का हो जाओगे, तो आना जाना जो है जन्मना मरना हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। जो व्यक्ति ऐसा जीता है, जो प्रभु को जान लिया है सुमरण करके ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, और हमेशा उसकी होंद को स्वीकार करता है, चलते फिरते सोते बैठते, जो हमेशा प्रभु में जीता है, कहते हैं उसके पांव को पूजो, उसके पांव को जो है अपने सिर में लगाओ, उससे तुम्हारा जो है किस्मत बदल जाएगा। नानक तिस जन के पूजो हो सद पैरा। और जो व्यक्ति ऐसे संत महापुरुष जिसने प्रभु को प्राप्त किया है, जो ब्रह्म ज्ञानी लोग हैं, ऐसे संत महापुरुष के चरणों में जो अपना जीवन व्यतीत करता है, कहते हैं कि वो भी महापुरुष हो जाता है। ऐसा पुरुष जिसने वाहेगुरु को प्राप्त किया है, उसको पांव को पूजने के लिए गुरु महाराज कहते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं, कहते हैं संतों को देख के एलर्जी खुंदा है जी, गुरु महाराज कहते हैं संतों के पांव को पूजो जिसने प्रभु को पाया है, पूजने के लिए बोले। और कहते हैं जी मत्था नहीं टेकना चाहिए संतों को, महापुरुषों को। मत्था टेकने के लिए संत महापुरुष थोड़े बोलते हैं, वहां जाके झुक जाता है। जो सिर साई ना निवे सो सिर दीजे डार, और जिस पिंजर में बिरहा नहीं सो पिंजर ले जा। और जो व्यक्ति नम्रतापूर्वक गुरु वाला होकर के ऐसा जीवन व्यतीत करता है, उसका लोक सुखे पर लोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की।